कर्मयोग नामक तीसरे अध्याय की चर्चा भगवान श्री कर रहे हैं। आज जो पुरुष जो श्लोक पढ़े गए हैं, भगवान श्री पार्थ को अनासक्त कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं। कर्तव्य पालन पर बहुत बल दे रहे हैं, ढंग भी बता रहे हैं, उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी बात को पक्का करने के लिए। गिने चुने लोगों का नाम ले रहे हैं जिन्होंने ऐसा किया है और सिद्धि को प्राप्त कर गए हैं। अपना उदाहरण भी भगवान ने प्रस्तुत किया है। मुझे तीनों लोगों में पार्थ कुछ पाने योग्य नहीं है, फिर भी मैं करता ही रहता हूँ, कर्म करता हूँ। यदि मैं कर्म न करने की उदाहरण जनता के सामने प्रस्तुत करता हूँ तो मैं जन समुदाय का हत्यारा हो जाऊँगा। अतएव उठ, अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर, अशक्ति रहित होके कर्म कर। इस पर बहुत बल दे रहे हैं, अनासक्त होके कर्म कर, राग द्वेष रहित होके कर्म कर। इससे पहले साधकों थोड़ा कर्मयोग को समझने की कोशिश करते हैं। इसी पर हमारा जीवन आधारित है, हम सब के सब कर्मयोगी ही हैं, हम सबको कर्मयोगी ही बनना है। भक्ति बल देती है, सो स्वामी जी महाराज कहते हैं भक्ति युक्त कर्मयोगी बनिएगा, आपके लिए सब कुछ बहुत आसान रहेगा। भक्ति बल देती है, समझ देती है, समर्थ देती है, सब कुछ देती है। क्यों? परमात्मा के साथ जोड़ के रखती है, तो जो परमात्मा के पास है वह सब कुछ अनायास ही मिलता है। अतएव कर्मयोग की साधना कोई कठिन साधना नहीं रह जाती। संत महात्मा समझाते हैं हर व्यक्ति के पास समय है, सामग्री है, समर्थ है, समझ है। चार शब्दों का नाम लिया, यदि इनको व्यक्ति संसार के लिए प्रयोग करता है, इन्हें संसार की ओर मोड़ देता है तो इसे कर्मयोग कहा जाता है। परमात्मा की ओर मोड़ दिया जाता है तो इसे भक्ति योग कहा जाता है। इन चार शब्दों को प्रकृति की ओर मोड़ दिया जाता है तो इसे ज्ञान योग कहा जाता है। अपनी ओर, अपनों की ओर मोड़ दिया जाता है तो इसे जन्म मरण का योग कहा जाता है। पड़े रहो जन्म मरण के चक्कर में। क्या है ये कर्मयोग? दिव्य सज्जनों, कर्म तो जड़ है, इससे कोई पता नहीं मैं बंधन का कारण बनूंगा या मोक्ष का साधन बनूंगा। परसों तक आप पढ़ रहे थे, प्रेरणा दी जाती है, संसारी एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं। ये कर्म ही है जो हमारे बंधन का कारण है, इसलिए इसको करना बंद करो। भगवान श्री इस पर बहुत गहरी चोट, बहुत गहरा मुक्का मारते हैं, कहते हैं नहीं, कर्म बंधन का कारण तब है यदि इसे समझ से ना किया जाए। यदि इसे समझ कर किया जाए तो ये कर्म मोक्ष का साधन है, ये कर्म बंधन का कारण नहीं। अतएव जो कहते हैं कर्म त्याग करो, कर्म त्याग करो, भगवान उनको अच्छा नहीं मानते। कर्म करने पर बल दे रहे हैं भगवान श्री, और कैसे कर्म किया जाए ये युक्ति भी साथ ही समझा रहे हैं, ताकि ये कर्म बंधन का कारण न बन के तो मुक्ति का साधन, मोक्ष का साधन बन जाए। भगवान श्री कहते हैं कर्म बीज है, इसको अंतःकरण रूपी भूमि में बो दिया जाता है, कालांतर में अंकुरित होता है, पौधा बनता है, विशाल पेड़ बनता है, फिर उस पर तरह तरह के फल लगते हैं। इस कर्म के पीछे जैसी आपकी भावना है वैसा ही आपको फल खाने को मिल जाता है। यदि आप कर्मयोगी बनना चाहते हो तो ऐसा कर्म करो, इस ढंग से कर्म करो कि बीज अंकुरित ही न हो। तो कैसे होगा? संत महात्मा समझाते हैं, जिस बीज को भून दिया जाए, उबाल दिया जाए, बीज तो बीज ही रहता है लेकिन वह अंकुरित नहीं होता, उसमें क्षमता, अंकुरित होने की, स्प्राउट होने की क्षमता खत्म हो जाती है। जिस रस्सी को जला दिया जाए, रस्सी रस्सी तो रहती है, रस्सी की तरह ही दिखाई देती है, कभी रस्सी जला के देखिएगा, उसकी उसके आकार में कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन उसके अंदर बांधने की क्षमता खत्म हो जाती है। जिस बीज को उबाल दिया जाए, ये बीज बीज की तरह ही रहते हैं, आप बॉइल्ड सीड्स खाते हो बिल्कुल वैसे के वैसे ही होते हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन उनको यदि भूमि में डाल दिया जाए तो उन्हें स्प्राउट करने की शक्ति नहीं हुआ करती। संत महात्मा समझाते हैं अपने कर्मों को, अपने कर्म बीज को इस प्रकार का बना दो, करने से पहले, करते समय और करने के बाद जो कर्म संस्कार न डाल सके वह कर्मयोग है, वह कर्म कर्मयोग बन जाएगा। कर्म करने से पहले, करते समय, करने के बाद जो कर्म संस्कार देने योग्य नहीं रह जाता वह कर्म कर्मयोग बन जाता है। क्या ऐसी बातें हैं जो हमारे कर्म को बंधन का कारण बनाती हैं, और क्या ऐसी बातें हैं जिनको छोड़ने से ये कर्म बंधन का कारण न बनके तो मोक्ष का साधन बन जाता है? थोड़ी सी साधारण बातों से शुरू करते हैं, जैसे कि अर्ज की जा रही थी अभी, कर्म तो बेचारा जड़ है, उसे बिल्कुल कोई पता नहीं कि मैं बंधन का कारण, मैं पाप कर्म बनने जा रहा हूँ या मैं पुण्य कर्म बनने जा रहा हूँ। किस पर निर्भर करेगा? आपके भाव पर। उदाहरण दिया, एक सैनिक, कहीं जंग हो रही है, भारत पाकिस्तान की जंग हो रही है, युद्ध हो रहा है, एक सैनिक हजारों की संख्या में शत्रु पक्ष के सैनिक मार देता है, जितने अधिक मारेगा उतना अधिक वह बहादुर, यदि हजारों लाखों को मारता हुआ वह वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो उसे मेडल मिलता है, जितने अधिक मारेगा वहां पर उतना उसको बहादुर शूरवीर घोषित किया जाता है और उसे वीर चक्र इत्यादि प्राप्त होता है। घर आ जाता है, छुट्टी पर आके अपने किसी कला कलेश, पत्नी से कहिए और बात छोड़िए, पत्नी से थोड़ा आपस में बातचीत होती है, गर्मा गर्मी हो जाती है, सैनिक है, पुरुष है, जोर से मुख पर थप्पड़ मारता है और एक दांत बाहर निकल आता है, टूट जाता है, खून निकलता है, पत्नी का भी अपना ईगो होता है, वह सब कुछ सहन करने को तैयार नहीं, पुलिस को जाके रिपोर्ट कर देती है, यही व्यक्ति जो वहां हजारों लाखों को मारने वाला और उसे वीर चक्र प्राप्त होता है, इसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में जब जाती है तो इसको बंदी बना लिया जाता है। भाव का अंतर है, एक जगह पर वह देश के लिए युद्ध कर रहा है, रक्षा हमारी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए युद्ध कर रहा है, और दूसरी जगह पर भाव शत्रुता का है, वैर का भाव है, भाव पे अंतर आ गया। डॉक्टर साहब लंबी लंबी सर्जरी करते हैं, 5 मिनट से लेके 5 घंटे तक सर्जरी चल रही है, आप अपनी सर्जरी करवाते हो, बच्चे की पत्नी की सर्जरी होती है, चिराचारी भी होती है, पेट काटा जा रहा है, छाती काटी जा रही है, इत्यादि इत्यादि सूचर्स लगाए जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, कुछ अंग निकाले जा रहे हैं, कुछ डाले जा रहे हैं, ये सब कुछ होता है। ये सब कुछ करने के बाद आप पेमेंट भी करते हो, ह्यूज पेमेंट इन लैक्स। वही डॉक्टर जो वहां सर्जरी कर रहा है, घर आके उसी चाकू के साथ किसी की मामूली उंगली को भी चोट लग जाती है उसकी शत्रुता के कारण, तो उसका हाल भी वैसा ही जैसा उस सैनिक का हुआ है। वहां 5 घंटे की सर्जरी कर रहा है, भाव का अंतर देख, ये भाव क्या 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 बना देता है। तो एक मुख्य बात तो हो गई, इस कर्म के पीछे कि ये कर्म बंधन का कारण बनेगा, पाप कर्म होगा या पुण्य कर्म होगा, उसके पीछे आपका भाव कैसा है इस पर निर्भर करेगा। भाव तो एक मोटी सी बात हो गई, भगवान श्री तो पिन पॉइंट करते हैं किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री कहते हैं कर्मयोग, कर्म को कर्मयोग बनाने के लिए एक बात, सब साधक होना पढ़े लिखे हो, अतएव पढ़े लिखों के साथ पढ़ी लिखी बातें, असक्ति का त्याग करो। किस किस चीज के साथ कर्म यदि व्यक्ति असक्ति युक्त होके करता है तो उसका कर्म बंधन का कारण बन जाता है। देवियों मामूली मामूली बातें हैं, इन्हें कठिन नहीं समझिएगा, बहुत आसान है। एक बार सुनेंगे, उन पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपको बहुत याद हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि मुझे किन किन चीजों से बच के रहना है। कौन नहीं चाहता कि हम कर्म, अच्छा कर्म करें और अच्छा कर्म बार बार करें, एक कर्म के प्रति आसक्ति। अच्छा ही कर्म मैं करूं तो बुरा कौन करेगा, भगवान श्री को संसार चलाना है देवियों, उन्हें सिर्फ अच्छे कर्म, सुपीरियर कर्म करने वाले ही नहीं चाहिए, उन्हें वो भी चाहिए जो घटिया कर्म, जो इन्फीरियर कर्म भी करें। अगर सारे के सारे व्यक्ति सुपीरियर कर्मों के प्रति आसक्त हो जाएंगे तो भगवान की गाड़ी रुक जाएगी, भगवान की गाड़ी चलेगी नहीं। यदि कहे हम सिर्फ पढ़ाने का ही, प्रवचन देने का ही काम काज करेंगे तो झाड़ू पोछा कौन लगाएगा, तो घर में लैट्रिन बाथरूम कौन साफ करेगा। कर्म के प्रति आसक्ति। दूसरी आसक्ति, ऐसा कर्म करने से शुभ फल मिले, मैं वही कर्म करूंगा, ये इसका आधार क्या है, शुभ फल, श्रेष्ठ फल। थोड़ा पढ़ूं और मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं, यदि हर कोई इसी प्रकार की सोच वाला हो जाएगा, कर्म फल क्या है, आईएएस ऑफिसर बनना या बहुत बड़ा बनना, मैं वही कर्म करूंगा जिससे करके मैं बहुत बड़ा बन जाऊं, तो ये फल के प्रति आसक्ति है। दो आसक्तियां हो गई, आसक्ति अर्थात लगाओ, आसक्ति अर्थात राग। साधारण शब्दों में राग को समझो तो राग, जिसका व्यक्ति हर वक्त राग गाता रहे वह राग, वह चाहे व्यक्ति हो चाहे वह वस्तु हो, हर वक्त एक ही बात का, आप कहते हो ना क्या है, हर वक्त एक ही बात का राग अलापते रहते हो, मानो वह व्यक्ति राग युक्त है, वह राग से सफर कर रहा है, इज सफरिंग फ्रॉम राग अटैचमेंट्स। दो आसक्तियां, समय तो हो गया है देवी सज्जनों, अभी जारी रखेंगे। बहुत सुंदर चर्चा है ये, समझने योग्य। सुंदर मतलब सुनने योग्य नहीं, इसको समझ के तो अपने जीवन में उतारने योग्य चर्चा है। तो इस चर्चा को जारी रखेंगे, आज यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिएगा। धन्यवाद।